नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार राजधानी को स्वच्छ, हरित और विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है। नई दिल्ली के तालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड में एनडीएमसी वार्षिक अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। दिल्ली विश्वविद्यालय इस महीने की 12 से 14 तारीख तक साहित्य महोत्सव का आयोजन करेगा। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा के तनाव पर चर्चा करना और परीक्षाओं को एक उत्सव तथा जीवन के एक जरूरी हिस्से के तौर पर मनाना है। इस साल परस्पर संवादात्मक सत्र देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एग्जाम वॉरियर्स के साथ होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि MyGov पोर्टल के जरिए इस कार्यक्रम के लिए 4,50,00,000 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। ये कार्यक्रम दूरदर्शन, प्रधानमंत्री के YouTube चैनल और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसे वेव्स OTT, Amazon प्राइम वीडियो, जियो, Z5, सोनी लिव और Spotify सहित कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आत्मविश्वास, सकारात्मकता और संपूर्ण कल्याण को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के परीक्षा के अनुभव को नया रूप देना है। ये पहल हर साल विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की बढ़ती भागीदारी के साथ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के परीक्षा पे चर्चा लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे ये पहल एक जन आंदोलन में तब्दील हो गई, जिसने भारत की शैक्षिक यात्रा में एक निर्णायक मोड़ ला दिया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को दोहराया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने बच्चों पर केंद्रित दृष्टिकोण और भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। विश्व की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया है कि इस आयोजन में 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये आयोजन व्यापार, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और पर्यटन के रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित होगा। मंत्रालय ने कहा कि शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी के रूप में पहली बार प्लास्ट इंडिया की परिकल्पना की गई है। इस वैश्विक प्रदर्शनी का विषय है भारत नेक्स्ट, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज भारत मंडपम में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2026 की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी, सम्मेलन और कन्वेंशन में शामिल हुई। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने प्रदर्शनी में प्लास्टिक के नए विकास, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी तकनीकों का दौरा किया। उन्होंने देश भर में सफाई, कचरा अलग करने और सस्टेनेबल जीवन शैली का संदेश दे रही स्वच्छता यात्रा मोबाइल यूनिट के साथ भी संवाद किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जिम्मेदारी से उत्पादन, 100% रिसाइकलिंग, दोबारा उपयोग और नवाचार से ये क्षेत्र पर्यावरण की रक्षा के साथ रोजगार और विकास को भी बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे राजधानी स्वच्छ, हरित और विकास की दिशा में आगे बढ़ती रहे।
दुनिया चाहती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो और उसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप 100% रिसाइकलिंग पे काम करें, रीयूज पे काम करें और हम सब अपने प्रोडक्शन मेथड्स को नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए नए प्रोसेसेस को डेवलप करें। प्लास्टिक हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण इस एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव डालती है और इस मिसमैनेजमेंट को चेंज करने की ताकत आप सबके अंदर है और आप लोग उस पर काम भी कर रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत वैश्विक मंच पर मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और आत्मविश्वास तथा निर्णायक नीतिगत सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और रूपांतरण के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है और देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है। वे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।
हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी उद्यमी ये सशक्त हो, भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत अनेक देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है।
अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है क्योंकि देश के पास बहुत बड़ी संख्या में युवा प्रतिभा मौजूद है।
जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत के टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है, हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है।
प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने भी आज सवेरे धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया था। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत टैक्सी बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत भारत का पहला सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बिना किसी कमीशन और बिना अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करता है, जिसका सीधा लाभ ड्राइवरों को मिलता है। ये विदेशी निवेश पर आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों का एक स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर परिचालन एकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, सुरक्षा और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक तथा निजी हितधारकों के साथ 9 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया।
भारत टैक्सी ऐप सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और नागरिक केंद्रित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत टैक्सी शून्य कमीशन और सर्च की प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करता है। इसमें लाभ का प्रत्यक्ष वितरण चालकों को किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी भारत टैक्सी ने सारथी दीदी और बाइक दीदी जैसी पहलों की भी शुरुआत की है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत ताज।
दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त संजय त्यागी ने बताया है कि राजधानी में पिछले वर्षों की तुलना में बच्चों के लापता होने के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि गुमशुदगी, विशेषकर बच्चों के लापता होने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री त्यागी ने बताया कि दिल्ली में इस वर्ष जनवरी महीने में पिछले वर्षों में इस दौरान इस तरह की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि लापता मामलों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ ऑनलाइन और 112 पर भी दर्ज कराई जा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस महीने की 12 से 14 तारीख तक साहित्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार 3 दिवसीय इस महोत्सव में हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें कवि सम्मेलन, भजन कार्यक्रम और आदिवासी तथा लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस महोत्सव के दौरान पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। DU कल्चर काउंसिल के अध्यक्ष और साहित्य महोत्सव के संयोजक अनूप लाठर ने बताया कि इस महोत्सव का केंद्र बिंदु राष्ट्र प्रथम होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 50 से अधिक वक्ताओं के भाग लेने की संभावना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मनोज।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6ठा हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का आयोजन कल से होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने आज ताल कटोरा क्रिकेट ग्राउंड में NDMC वार्षिक अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य फिटनेस, टीम वर्क और खेल भावनाओं को एक जीवंत उत्सव बनाना है। इसके अंतर्गत ट्रैक दौड़, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, भाला फेंक, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज और अन्य खेल विधाओं सहित कई तरह के आयोजन शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री चंद्रा ने खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि खेलों के लिए शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि खेल स्वाभाविक रूप से एक जीवन शैली से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि NDMC अपने कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच खेलों और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 3000 से अधिक NDMC कर्मचारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच फिटनेस और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रतियोगिता 13 मार्च तक खेली जाएगी। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले 200 दिव्यांग छात्रों ने आज से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई 3री दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्रों ने दृष्टिबाधित, बौद्धिक अक्षमता, मस्तिष्क पक्षाघात, ड्वार्फ, लोकोमोटर हाथ एवं पैर श्रेणियों में आयोजित 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक एवं चक्का फेंक गतिविधियों में भाग लिया। रेलवे बोर्ड के सदस्य परिचालन और व्यवसाय विकास हरिशंकर वर्मा ने आज बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय का दौरा किया और जोन के परिचालन प्रदर्शन और रणनीतिक दिशा की समीक्षा की। श्री वर्मा ने विभागाध्यक्षों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक से कहा कि रेल संचालन के दौरान संरक्षण और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने रजत पदक जीत लिया है। नई दिल्ली में आज सुरुचि सिंह और सम्राट राणा की जोड़ी ने 479.6 अंक हासिल किए। उज्बेकिस्तान के निगीना सेटकुलोवा और मुखमद कमालोव ने 481.3 अंक के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सीनियर वर्ग में भारत ने अब तक 5 पदक हासिल कर लिए हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के साथ 28 रन बना लिए हैं। और राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वही दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार राजधानी को स्वच्छ, हरित और विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है। नई दिल्ली के तालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड में NDMC वार्षिक अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। दिल्ली विश्वविद्यालय इस महीने की 12 से 14 तारीख तक साहित्य महोत्सव का आयोजन करेगा। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।